मदन जी अन्वय से बहुत खुश थे। उन्हें आन्या पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई थी और अब अन्वय उसी से शादी करने का फैसला ले चुका था। वे अन्वय के जाने के बाद खुशी खुशी अपने कमरे में आए तो माधुरी जी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, क्यों आया था वो यहाँ? मेरा भाई है, शादी जैसा बड़ा फैसला लिया है उसने, तो बड़े भाई होने के नाते मुझे बताने आया था कि मुझे उसके साथ आन्या के घर जाना है, लड़की के मम्मी पापा से रिश्ते की बात करने। उन्होंने मुस्कुराकर पूरी बात बता दी। उनकी बात सुनकर माधुरी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, और आपने हामी भर दी? मैं बता देती हूँ, उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बहन का दिल तोड़कर वो उस कल की आई लड़की से शादी करना चाहता है तो करे, पर न मैं उसकी शादी में शामिल होंगी, न ही आप वहाँ जाएंगे, और शादी के बाद वो उस लड़की को लेकर यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वो मेरा छोटा भाई है, मैंने माँ बाप दोनों का प्यार दिया है उसे, उसको पालकर इतना बड़ा किया है, तो जब वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ले रहा है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा। उसकी शादी यहीं से होगी, वो भी पूरे धूमधाम से, और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम मेरी पत्नी और अन्वय की भाभी का फ़र्ज निभाना चाहती हो तो यहाँ रुक सकती हो, वरना अपने घर चली जाओ। मुझे अपने भाई की खुशी में कोई ग्रहण नहीं चाहिए, पर इतना याद रखना, अगर तुम मेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू होने का फ़र्ज नहीं निभा सकती, इस घर की छोटी बहू का स्वागत नहीं कर सकती, तो लौट कर कभी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने गुस्से में अपना फ़ैसला सुना दिया। उनकी बात सुनकर माधुरी जी पहले तो अवाक रह गईं और अगले ही पल गुस्से से बोलीं, आप अपने भाई के लिए मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं नहीं निकाल रहा, फ़ैसला तुम पर छोड़ा है। तुम चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कर ले, क्योंकि तुम्हारी बहन को अन्वय पसंद है, पर मेरे भाई को वो पसंद नहीं है, और वो जिसे पसंद करता है उसकी शादी उसी से होगी। तुम अपनी बहन के प्यार के लिए मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो आन्या से प्यार करता है और उसकी शादी उसी से होगी। अब फ़ैसला तुम्हारा है, मेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू होने का फ़र्ज निभाओ, अपने देवर की शादी में खुशी खुशी शामिल हो, भाभी होने का दायित्व भाव और आने वाली बहू का खुले दिल से स्वागत करो, वरना अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती और अगर तुम्हें अपने मायके के बारे में ही सोचना है तो वहीं लौट जाओ। मदन जी ने इतना कहा और वहां से चले गए। माधुरी जी उनकी बातों से सुन रह गई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मदन जी उनके साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मदन जी अपने रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी से उनकी हर जिद सहते रहे, तो उन्होंने उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी समझ लिया था, पर आज उनका गुस्सा देखकर वो दंग रह गई थीं। अन्वय वहां से निकलकर अपने महल में पहुंचा तो आन्या बाहर गार्डन में खामोश बैठी हुई थी। अन्वय ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, यहां अकेले क्यों बैठी हो? आन्या अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी जब उसके कानों में अन्वय की आवाज पड़ी। उसने चौंक कर नजरें घुमाई तो बगल में बैठा अन्वय उसे ही देख रहा था। आन्या ने एक पल को उसको देखा, फिर वापस सामने देखते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी हुई थी। उदास हो कि कुछ देर में यहाँ से मुझसे दूर जाना है? अन्वय ने उसके हाथ को थामते हुए कहा। आन्या ने एक शब्द नहीं कहा, उसकी तरफ खिसक कर उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अन्वय उसकी मनोस्थिति समझ रहा था। उसने एक हाथ से उसकी हथेली थामी हुई थी और दूसरे को घुमाकर उसके कंधे को पकड़ लिया। दोनों खामोशी से बैठे रहे। शाम का वक्त हो गया था। माधुरी जी से मदन जी ने चलने के लिए पूछा तक नहीं, क्योंकि वे कोई नाटक नहीं चाहते थे वहाँ। अन्वय, आन्या, शिखर जी, अनामिका जी और मदन जी आन्या के घर के बाहर खड़े थे। अन्वय ने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने कावेरी जी खड़ी थीं। जैसे ही उनकी निगाह सामने खड़ी आन्या पर गई, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने न जगह देखा न माहौल और सीधे चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर अपनी शादी से भाग गई थी, अब लौटकर क्यों आई है यहाँ? अब तेरा इस घर से या हमसे कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ इतने दिनों थी वहीं वापस चली जा। आन्या ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और आराम से बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, अपने पापा से मिलना है मुझे। मर गया तेरा बाप उसी दिन जब तू सारे समाज के सामने उसकी पगड़ी उछालकर भाग गई थी। अब यहाँ तेरा कोई नहीं है और ना ही तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह है। अगर चाहती है कि मैं तेरी जान ना लूं तो चली जा मेरी नज़रों के सामने से और दोबारा कभी पलटकर इस तरफ देखियो भी मत। कावेरी जी बेहद गुस्से में थी, सामने सिर्फ आन्या थी, बाकी सब साइड में थे। आन्या उनके धमकाने पर भी वहां से नहीं हिली तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गुस्से में उसकी बाँह पकड़ते हुए कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, ढीठ है ना, कोई बात नहीं, तुझे कैसे लाइन पर लाना मुझे बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही उन्होंने आन्या की बाँह पकड़ी, इसके साथ ही किसी ने उनके हाथ को पकड़कर आन्या से दूर कर दिया। कावेरी ने गुस्से से जलती निगाहें उठाई तो अन्वय को देखते ही गुस्से से भड़कते हुए बोली, तू तो अपने साथ अपने यार को भी लेकर आई है, सारी दुनिया में हमारी बदनामी करवाने के बाद भी तुझे चैन नहीं पड़ा जो अपने यार को लेकर यहाँ आ गई? कावेरी जी ने गुस्से में आन्या पर हाथ उठा दिया।